अठारहवां चैप्टर इतिहास और दर्शन। इतिहास अतीत का होता है। अतीत और अतीत का ज्ञान दो पृथक बातें हैं। इसमें दूसरी पहली पर निर्भर करती है। मानव अतीत को बार बार वर्तमान के शब्दों में पुनर्व्याख्यायित किया जाता है। इतिहास यथार्थ का बढ़ता हुआ आत्म प्रकाश है और इस दृष्टि से वह दर्शन से अभिन्न है। परंतु दर्शन की कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा अन्य विषयों के इतिहास से पृथक उसका अपना कोई इतिहास नहीं हो सकता। इतिहास और दर्शन का तादात्म्य मुश्किल से कोई इतिहासकार स्वीकार करेगा, क्योंकि आत्मा अभिव्यक्ति के रूप में इतिहास सिर्फ एक समाज की अभिव्यक्ति होता है, न कि संपूर्ण मानवता की। क्या इतिहास में प्रत्ययाभास अंतर्भूत है? इस प्रश्न का उत्तर देना इतिहास और दर्शन के तादात्म्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक होगा। बौद्धिक ज्ञान होने के कारण इतिहास प्रत्यय का प्रयोग करता है, शुद्ध प्रत्यय का भी और प्रत्ययाभास का भी, क्योंकि एक के बिना वह ज्ञान नहीं होगा और दूसरे के बिना इतिहास न होकर दर्शन हो जाएगा। और यह भी सत्य है कि इतिहास तार्किक अर्थात दार्शनिक तत्व के बिना संभव नहीं है, तो दर्शन प्रत्यक्ष अथवा ऐतिहासिक तत्व के बिना संभव नहीं है। तो क्या इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानना चाहिए या एक दूसरे पर आश्रित अथवा परस्पर अभिन्न? प्रस्तुत निबंध में इतिहास और दर्शन की पृथक पृथक मीमांसा करते हुए कॉलगेरो, कलिंगवुड, स्पेंगलर, टाइनबी और विशेषतः क्रूचे के संदर्भ से दोनों की अभिन्नता पर विचार किया गया है। इतिहास दर्शन को अन्य घटनाओं में सिर्फ एक घटना के रूप में देखता है, जबकि दर्शन इतिहास के प्रामाण्य अर्थ और वास्तविकता को निश्चित करने का दावा करता है। इतिहास के लिए प्रामाण्य का प्रश्न नहीं उठता, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है सामर्थ्य का। जो सफल होता है वही इतिहास में महत्वपूर्ण समझा जाता है। उदाहरण के लिए इतिहास में ईसा मसीह का महत्व ईसाई धर्म की विजय के कारण है, मार्क्स का लेनिन और स्टालिन के कारण। अन्यथा शायद ईसा का नाम ही पता न होता और मार्क्स का पता केवल समाज विज्ञान के इतिहास में होता। सामान्य इतिहासकार की इसमें रुचि नहीं होती कि कौन सा धर्म या सिद्धांत सच्चा है। वह यही पता लगाना चाहता है कि उसके क्या प्रभाव हुए हैं, कि उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार, स्तर और आयाम क्या इस प्रकार का है कि इतिवृत्त लेखक उस पर ध्यान दें। दर्शन का इतिहास हो या धर्म का, विज्ञान का या कला का या अन्य किसी वस्तु का, सभी में यही बात रहती है। इन इतिहासों में से ऐसे सिद्धांत, कल्पनाएं या कला विषय हमें उपलब्ध हो सकते हैं जिनके विषय में हमारा यह निर्णय हो कि वे तार्किक दृष्टि से प्रामाणिक, अंतर्दृष्टि से गंभीर अथवा सौंदर्य की दृष्टि से निर्दोष हैं। किंतु इस प्रकार के निर्णय तत्वतः इतिहास के बाहर होंगे, क्योंकि इतिहासकार की आंखों में किसी विषय का महत्व केवल उसके सत्तात्मक या असत्तात्मक परिणामों से ही निश्चित है। किंतु परिणाम की धारणा उतनी सरल या सीधी नहीं है जितनी उसे मानने के लिए हम उत्सुक हो सकते हैं। जो एक सीमित क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली लगता है वह बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में नगण्य निश्चित हो सकता है। रसल अथवा केन्स का कार्यकलाप तर्कशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण होते हुए भी सामाजिक राजनीतिक इतिहास में उल्लेखनीय नहीं बनता। अतएव सामर्थ्य के निर्देशांकों का चुनाव न सिर्फ विषय वस्तु के क्षेत्र की विशिष्टता पर निर्भर करता है, अपितु विभिन्न क्षेत्रों को हमारे दिए हुए महत्व पर। बहरहाल इतिहासकार के लिए सामाजिक राजनीतिक घटनाओं का विश्व घटनाओं को व्यवस्थित रूप देने के लिए अंतिम चौकठा और अंतिम कसौटी बना रहता है। तथापि देश काल के निर्देशांक इसमें भी वैसे ही महत्वपूर्ण रहते हैं जैसे अन्यत्र। विद्याओं अथवा संस्थाओं के समान दर्शन भी एक जीवित समाज की उपजों में एक उपज के रूप में देखा जा सकता है। वह भी उनकी तरह उससे पुष्टि पाकर उसकी ओर निरंतर क्रियाशील रहता है, किंतु इस प्रकार की विधित्र इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण है, न कि दार्शनिक के लिए। दार्शनिक के लिए इतिहास और दर्शन का संबंध ही एक समस्या के रूप में उत्पन्न होगा, और यह समस्या इतिहास के क्षेत्र में न होकर दर्शन के क्षेत्र में होगी। विचारक की अपनी ऐतिहासिकता से अनिवार्यता उत्पन्न समस्या अनेक विचारकों को इतिहास और दर्शन के समान सामान्य प्रत्ययों की पुनर्व्याख्या की ओर ले जाती है, ताकि उसका कोई समाधान प्राप्त हो। सामान्यतः यह प्रयत्न इन दोनों संप्रत्ययों के पारस्परिक सदृशीकरण को प्रस्तुत करता है, यहाँ तक कि वे अभिन्न प्रतीत होने लगते हैं। इतिहास को या तो उस सब की समष्टि माना जा सकता है जो घटित हुआ है, अथवा उस सब की जिसको हम कुछ ऐसे साक्ष्य के आधार पर घटित हुआ माने जिससे कि घटनाओं को एक संगति प्रदान की जा सकती है। इनमें पहला विकल्प केवल घटित होने के प्रत्यय का आक्षेप करता है और उसके साथ अतीत, वर्तमान और अनागत में विभक्त काल का प्रत्यय जुड़ा रहता है। दूसरे विकल्प में न सिर्फ साक्ष्य की सत्ता अभ्युपगमित है, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसका साक्ष्य के रूप में अवधारणा भी। दार्शनिकों ने यह अक्सर माना है कि यह भेद विकल्पना मूलक है, किंतु उन्हें भी इससे इनकार करना कठिन होगा कि यह एक अनुभूत तथ्य है कि चिरकाल तक साक्ष्य के साक्षत्व का शक भी नहीं होता, और अतीत तब भी अतीत रहता है चाहे वर्तमान में किसी को उसका बोध भी न हो। मिनोआन माया एजेस्टेक प्राचीन सभ्यता भारतीय, ये उस अतीत के कुछ उदाहरण हैं जो अतीत के रूप में कुछ सदियों पूर्व विदित भी नहीं था। समय के अतीत, वर्तमान और भविष्य के विभेद में आक्षिप्त अनिवर्तनीयता इस बात का आश्वासन देती है कि बीत गए हुए के रूप में अतीत सदा ही बीता रहेगा। यह सही है कि अतीत का ज्ञान वर्तमान में ही हो सकता है, किंतु इस दशा में भी ज्ञान की क्रिया ही वर्तमान में है। उसके द्वारा जो जाना जाता है वह तो अतीत ही रहता है। पुनश्च जो साक्ष्य अतीत को जानने के लिए आवश्यक है वह वर्तमान में रहता है, वह स्वयं अतीत नहीं है, वह केवल उसे साक्ष्य के रूप में निश्चित करने वाले मानस को उसकी कारण विकल्पात्मक कल्पना के द्वारा अतीत तक ले जाता है। तथापि अतीत जिसे पुनः गढ़ा जाता है उसके उपादान होने के कारण साक्ष्य को केवल एक तार्किक संभावना के रूप में अवधारित न कर एक अनुभूत यथार्थ के रूप में अवधारित करना चाहिए। अतीत में सदा ही ऐसी घटनाएं हो सकती है जिन्होंने कोई साक्ष्य नहीं छोड़ा है, जिसे कि हम उस रूप में पहचान सकें, और जो घटनाएं इसीलिए फिर से गढ़े जाने के अयोग्य हैं। यह भी संभव है कि समय के बीतने पर साक्ष्य नष्ट हो जाए और इस तरह अतीत को जानना असंभव कर दे। किसी वस्तु का साक्ष्य होना यह मानकर चलता है कि प्रकृति के क्षेत्र में कोई कारण नियम है और मनुष्य के इतिहास में कोई मनोवैज्ञानिक अभिप्रायात्मक नियम है। इस प्रकार का नियम अनुभवात्मक घटना के अभ्यस्त प्रकारों का साधारणीकरण है, और इसीलिए सदा ही अतीत को गढ़ने के लिए अपर्याप्त आधार रहता है। इस प्रकार अतीत और अतीत के ज्ञान के बीच में साक्ष्य से ही भारी फर्क पड़ता है। यदि हम यह नहीं कहना चाहते कि अतीत निरंतर बनता रहता है अथवा शब्दांतर में अतीत है ही नहीं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि अतीत और अतीत का ज्ञान दो अलग बातें हैं, और इनमें जहां दूसरा पहले पर निर्भर करता है इसका उल्टा सही नहीं है। किंतु इस दूसरी परिभाषा में भी अतिव्याप्ति है। समय के अनिवर्तनीय होने से सभी चीज़ों में ऐतिहासिकता निश्चय से रहती है, किंतु जो ऐतिहासिकता ज्ञानगत है वह एक दूसरे स्तर और धरातल की है। उसमें जिसका इतिहास रहा है वह विभिन्न क्षणों में अनुभव की आत्मा अभिव्यक्ति है। अनुभव की यह आत्मा भी व्यक्ति विषय विषय और उन दोनों के विभिन्न स्तरों और रूपों में बढ़ते हुए अंतः संबंध के बारे में होती है। विषय की स्वतंत्रता इससे प्रत्याख्यात नहीं होती और न उसका स्वतंत्रता विकास निराकृत होता है। एक अर्थ में ज्ञान की ऐतिहासिकता अपने में अन्य समस्त ऐतिहासिकताओं का समावेश करती है, क्योंकि ज्ञान के विषय के रूप में उनका भी अपना इतिहास रहा है। लेकिन हम इस बात को दोहरा दें कि इसका यह किसी भी तरह अर्थ नहीं है कि विषय स्वयं में इतिहास से नहीं गुजरा है। हमारा मतलब सिर्फ यही है कि विषय के इतिहास के ज्ञान का स्वयं अपना इतिहास रहा है। इन दो इतिहासों के कालिक मान इतने विभिन्न हो सकते हैं कि व्यवहार में विषय के ज्ञान में परिवर्तन उसी विषय का माना जा सकता है जैसा कि वह अतीत में था, बिना इस डर के कि कहीं समय के बीतने के साथ विषय की कार्यप्रणाली भी न बदल गई हो। हम यह निर्भयता से स्वीकार कर सकते हैं कि भौतिक सत्ता का गठन उन पिछली कुछ शताब्दियों में नहीं बदला है जिनमें भौतिक विश्व का हमारा ज्ञान तेजी से बदला है। भौतिक विश्व में परिवर्तन का कालिक मान इतना अधिक है कि भौतिक विषयों की अपनी जीवनियों में जो परिवर्तन होते हैं वे उनके विषयों में वर्तमान के ज्ञान से उनके अतीत की कल्पना में प्रासंगिक नहीं है, किंतु यह उन अन्य विषयों के लिए सही नहीं है जो कि तेजी से बदलते हैं। और इसीलिए यही कारण है कि हम अतीत के शब्दों और रिवाजों में अपनी भावनाओं और अर्थों को पढ़ते हैं, उन भावनाओं और विचारों के उनके अपने रूप में फिर से जीना प्रायः असंभव है। और यही कारण है कि हम अतीत को बार बार वर्तमान के शब्दों में पुनर्व्याख्यायित करते हैं, किंतु प्राकृतिक इतिहास में ऐसा नहीं है। वहाँ ज्ञान के बढ़ने से अतीत अधिक अच्छी तरह से समझा जाता है। मानव इतिहास के समान उसकी पुनर्व्याख्या नहीं होती। मानव इतिहास में ज्ञान के बढ़ने के साथ घटनाओं का सिर्फ ढांचा ही ज़्यादा ठीक समझा जाता है, किंतु उनकी सार्थकता प्रत्येक युग को स्वयं अपने लिए फिर से समझनी पड़ती है। तथापि चूंकि भौतिक प्रकृति का ज्ञान मानवता के इतिहास के अंदर पड़ता है और इसी और उसके लिए सार्थक है, उसको मानव इतिहास का अंग और उसका उन अन्य क्रियाओं के साथ संबंध रखने वाला माना जा सकता है कि जिन्हें वह सार्थक समझता है। इस अर्थ में इतिहास प्रकृति से अधिक आधारभूत है, क्योंकि स्वयं प्रकृति का ज्ञान ऐतिहासिक उपज है और उन बातों पर निर्भर करता है जो कि स्वयं इतिहास निर्मित है। कॉलिंगवुड ने कहा है, प्राकृतिक विज्ञान अपने में एक पर्याप्त और संपूर्ण रूप का ज्ञान नहीं है। अपनी सत्ता के लिए वह किसी दूसरे प्रकार के ज्ञान पर निर्भर करता है जो कि उससे भिन्न है और उसमें नहीं बदला जा सकता। यह ज्ञान का प्रकार ऐतिहासिक है, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों की एक जाति है। और फिर न सिर्फ वैज्ञानिक सिद्धांत ऐतिहासिक तथ्यों पर निर्भर करते हैं और अन्य ऐतिहासिक तथ्यों के द्वारा सत्य अथवा असत्य होते हैं, बल्कि वे स्वयं ऐतिहासिक तथ्य हैं। अर्थात वे स्वयं ऐसे तथ्य हैं कि किसी ने उन्हें प्रतिपादित, स्वीकृत, सत्यापित या खंडित किया है। प्रकृति के प्रत्यय से इतिहास के प्रत्यय में संक्रमण के रूप में ये तर्क निर्विवाद हैं। यदि हम अपने को सिर्फ सामान्य प्रत्यय तक ही रोके रखें, किंतु यदि हम यह कहना चाहें कि सिर्फ प्रकृति का प्रत्यय ही नहीं, प्रकृति स्वयं ऐसी वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु पर अपनी सत्ता के लिए निर्भर करती है, तो हम अवश्य ही गलती करेंगे। हमें पता नहीं कि प्रोफेसर कॉलिंगवुड क्या यह कहेंगे कि जब हमें उनके बारे में पता नहीं था तो कोई विद्युत कण, इलेक्ट्रॉन नहीं थे या कि वे निहारिकाएं 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, जिनका पता 100 इंची टेलीस्कोप से लगता है, उस टेलीस्कोप के बनने के पहले नहीं थी। तथ्य की ऐतिहासिकता उसके प्रामाण्य का निर्णय नहीं करती, अन्यथा चूंकि सभी अर्थ तथ्य अनिवार्य रूप से ऐतिहासिक है, सभी बराबर प्रामाणिक हो जाएंगे। यह बात कि हमारे प्रकृति संबंधी ज्ञान में परिवर्तन होते हैं, यह नहीं बताती कि प्रकृति ने अपने आप को बदल लिया है। वह यही बतलाती है कि हमारा ज्ञान पहले की तुलना में अधिक पूर्ण हो गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्राकृतिक विषय अपने व्यवहार में बदले ही नहीं हैं, किंतु केवल इतना ही कि उनकी आयु इतनी भिन्न होती है कि हम इन्हें अपरिवर्तित मान सकते हैं। इतिहास के को यथार्थ के बढ़ते हुए आत्म प्रकाश के रूप में समझा गया है और इस अर्थ में उसे दर्शन के साथ अभिन्न अंग माना गया है। हेगेल, जिसने शायद सबसे पहले इस तादत्म का प्रतिपादन किया था, दर्शन को निरपेक्ष चित्त का आत्मज्ञान मानता था। यह निरपेक्ष चित्त विषय और विषयों को अपने अंदर ही पाता है। इसे आत्माभिव्यक्ति में विभेदन का अर्थ स्वसीमित और स्वपर्याप्त भागों में विभाजन नहीं है, बल्कि एक ऐसी मूर्त एकता है जिसे विभेदों के द्वारा और विभेदों ही में व्यक्त किया जा सकता है। एक ओर इतिहास और दर्शन का एक दूसरे से विभाजन सिर्फ उनके निरूपण की सुविधा के प्रयोजन से है, दूसरी ओर वह चित्त की क्रियाशीलता की तात्विक रूपों में आवश्यक अभिव्यक्ति है। इनमें पहला विभाजन विभिन्न विषयों के अवान्तर भेदों में आसानी से देखा जा सकता है, दूसरा उन सनातन रूपों में जिनमें चित्त अपने आप को सदा व्यक्त करता है। जैसा क्रोचे ने लिखा है, दर्शन में कोई भी अवयव अवयवी के बिना नहीं होते और अवयवी अवयवों के बिना नहीं होता। सच यह है कि सामान्य दर्शन विशिष्ट दार्शनिक विद्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं है और न वे विद्याएं सामान्य दर्शन के अतिरिक्त कुछ। शुद्ध संप्रत्यय में जहाँ की बहुवचन एक का बहुवचन होता है और एक बहुत का एक वचन और बहुवचन को अलग अलग नहीं किया जा सकता। सत्ता के विविध रूप के द्वारा अपने को व्यक्त करने वाली सजीवी एकता की धारणा स्पेंगलर जैसे इतिहासकारों ने स्वीकार की है। स्पेंगलर के लिए एक समाज की आत्मा अपने आप को कला और गणित के द्वारा उतना ही व्यक्त करती है जितना कि विज्ञान और धर्म। दर्शन या वस्तु शैली के द्वारा यह अपने विकास के युग में भी, जिसे संस्कृति कहा गया है, और हास्य के युग में भी, जिसे सभ्यता कहा गया है, मार्क्स के लिए भी समाज के श्रेणी विभाजन के विशिष्ट रूपों को पैदा करने वाले उत्पादन संबंधों के प्रचलित रूप विज्ञान और कला, दर्शन, कानून और धर्म के लिए एक आधारभूत खाका देते हैं। इन उत्पादन संबंधों के द्वंद्वात्मक विकास में एक युक्ति या योजना है, जैसा कि स्पेंगलर के लिए एक संस्कृति की बुद्धि और हास में किसी प्राणवान सत्ता जैसी संगति है, तथा स्पेंगलर के लिए यह एकता ऐसे आत्मरूप की एकता है जिसका अंतर्ज्ञान एक समाज के सांस्कृतिक रूपों की अन्य समाज से तुलना करने पर ही प्राप्त हो सकता है। मार्क्स के लिए यह एकता उस समय के प्रचलित आधारभूत वर्ग संबंधों के द्वारा दी गई होती है और उस बलवान वर्ग के संदर्भ में ही यह घटित होती है जिसके स्वार्थों का सामाजिक व्यवस्था अपने विविध कार्यों में साधन करती है। कम से कम स्पेंगलर के लिए यह समाज सार्वभौमिक समाज नहीं है। इसमें टाइनबी स्पेंगलर के साथ है, क्योंकि उसके लिए भी इतिहास विश्व इतिहास न होकर अलग अलग समाजों का इतिहास है। यहाँ चित्त की आत्माभिव्यक्ति के रूप में एक विशिष्ट समाज की आत्माभिव्यक्ति के रूप में इतिहास के अर्थ में गहरा अंतर है। पहले का अर्थ एक सार्वभौमिक एकान्वित विकास है, चाहे वह सरल रेखाकार हो चाहे द्वंद्वात्मक श्रेणी के रूप में हो। दूसरे का अर्थ है पर्याप्त रूप से अनेक स्वतंत्र समाज जिनका एक दूसरे से कोई संबंध भी आवश्यक नहीं है। जैसा कि स्पेंगलर ने कहा है, विचार या इतिहासकार के पास समूचे अतीत को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से, जो कि स्वयं विचारक तक उपनीत होता है और उसमें अपने को चरितार्थ पाता है, देखने के सिवाय कोई चारा नहीं है, तो भी पश्चिमी इतिहासकारों और विचारकों का यह बड़ा दोष रहा है कि वे यह मानते हैं कि उनकी अपनी चेतना में न सिर्फ पश्चिमी यूरोपीय इतिहास धारा का अपितु समस्त ऐतिहासिक अतीत का विकास क्रमशः चरितार्थ होता है। यह ठीक है कि स्पेंगलर और टाइनबी ने, खासतौर से टाइनबी ने, अपने मस्तिष्क को विभिन्न समाजों के इतिहास से पुरस्कृत किया है और तब उनकी उत्पत्ति वृद्धि और हास्य के नियमों को खोजने की कोशिश की है, किंतु वे अपवाद हैं और उनमें स्पेंगलर कम से कम ग्रीस और रोम, आधुनिक पश्चिम और मागी विश्वों पर अधिक जोर देते हैं। इसीलिए इतिहास और दर्शन का तादात्म्य मुश्किल से ही कोई इतिहासकार स्वीकार करेगा, क्योंकि आत्मा भी व्यक्ति के रूप में भी इतिहास में सिर्फ एक समाज की अभिव्यक्ति होती है, न कि संपूर्ण मानवता की। विभिन्न समाजों के बीच अपेक्षित मूल्यांकन अथवा प्रमाण्य निश्चय असंभव है, और यदि उसकी चेष्टा भी की जाए तो वह सिर्फ या तो संबंध विचारक के मूल निर्देशांकों को प्रतिबिंबित करेगी अथवा अधिक से अधिक उस ऐतिहासिक समाज के जिसका वह सदस्य है। इसीलिए इतिहास के लिए अनेक दर्शन ही हो सकते हैं, न कि एक दर्शन। ये अनेक दर्शन विशिष्ट समाजों के पूर्वाभ्युपगमों की सैद्धांतिक चेतना के प्रतिबिंब होंगे। ये अभ्युपगम या तो वर्ग संरचना एवं वर्ग स्वार्थों के रूप में अवधारित होंगे, जैसा कि मार्क्स मानते हैं, अथवा किसी विशेष समाज का विशिष्ट आत्मरूप होगा, जैसा कि स्पेंगलर का कहना है, अथवा तत्वज्ञान के कोई अंतिम अभिवाद सिद्धांत होंगे, जैसा कि कालिंगवुड ने कहा है। चाहे जिस रूप में भी वे सोचे गए हों, उनमें एक समान लक्षण रहता है, और वह है कि उन्हें छोड़ा जा सकता है, झूठा साबित नहीं किया जा सकता। जैसा कि कालिंगवुड ने अपनी पुस्तक मेटाफिजिक्स में कहा है, वे न सच है न झूठ, वे पूर्वाभिउपगम है। इसीलिए दर्शन इस दृष्टि से न सच होगा न झूठ, बल्कि पर्याप्त अथवा अपर्याप्त रूप से उस समाज के अयुत सिद्ध तथा अंत संबंध अभ्युपगम्यों की अन्यूनाधिक अभिव्यक्ति में समर्थ होगा जिसमें कि वह पैदा हुआ है। बड़े और छोटे विचारकों के बीच में अंतर यह नहीं है कि एक गलत है और दूसरा सही, बल्कि यह कि एक अधिक समुचित और व्यापक अभिव्यक्ति में समर्थ है और दूसरा कम। फलतः प्रत्येक युग को अपने अलग दार्शनिक अथवा दार्शनिकों की श्रेणी की आवश्यकता होगी, जो कि उस समाज की अभिव्यक्ति न्यूनाधिक रूप से करेंगे। इसीलिए दर्शन भी इतिहास की तरह से कभी समाप्त नहीं होगा। तथापि जिन दार्शनिकों ने इतिहास और दर्शन का तादात्म्य बताया है, वे इतने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने यह भी बताने की चेष्टा की है कि किन तात्विक रूपों से चित्त क्रियाशील होती है, अथवा किन द्वंद्वों से ऐतिहासिक प्रक्रिया अनिवार्य रूप से गतिशील होती है, अथवा वृद्धि और हास के किन अयुत सिद्ध रूपों को ऐतिहासिक गति अपने अंदर आवश्यक रूप से धारण करेगी। यह अनिवार्यता इतिहास का अतिक्रमण करती है और एक प्रकार की अनुभव निरपेक्षता का रूप ले लेती है। चाहे हेगेल, चाहे मार्क्स, चाहे स्पेंगलर, सब कम से कम इस बात पर एकमत हैं कि जिस अनिवार्यता को उन्होंने खोज निकाला है, उसमें ऐतिहासिकता नहीं है। हेगेल के द्वंद्वात्मक नए के अवधारणात्मक रूप, मार्क्स के ऐतिहासिक प्रक्रिया के द्वंद्वात्मक रूप, और स्पेंगलर का वह सजीवी तर्क जो कि संस्कृति को सभ्यता बना देता है, सब ऐसे प्रमाण्य का दावा करते हैं जो कि प्रत्येक और समस्त ऐतिहासिक युगों का अतिक्रमण करता है। कालिंगवुड ही शायद अकेला व्यक्ति है जिसने ऐतिहासिक प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार की पूर्व सिद्ध अनिवार्यता के प्रतिपादन को अस्वीकार किया है। क्रोचे ने यह माना है कि इतिहास की नित्यता दर्शन की नित्यता का आक्षेप करती है और प्रत्येक युग का अपना दर्शन होता है, किंतु फिर भी क्रोचे ने चित्त की क्रियाओं के तात्विक रूप प्रस्तुत किए हैं। उसके अनुसार सौंदर्य शास्त्र, तर्क शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं आचार शास्त्र चित्त की क्रियाशीलता के चार विभक्त पर्व बनाते हैं। इनमें प्रत्येक स्वयं में संपूर्ण नहीं है, किंतु संपूर्ण के आदर्श विकास की एक अवस्था है। इसीलिए दर्शन निरपेक्ष चित्त के तात्विक रूपों और उनके परस्पर संबंधों की अभिव्यक्ति है। इतिहास चित्त की गत्यात्मक एकता से अभिन्न है, क्योंकि कोई अवयवी गति शून्य वस्तु के रूप में नहीं होता। संप्रत्यय में अंतर्निहित चेतना एक गति है, प्रवृत्ति है, दिशा है। दूसरी ओर सिर्फ दर्शन ही उन रूपों की अभिव्यक्ति है जो गति निहित मानस को अवश्य लेनी चाहिए। जैसा कि गिडो कोलोगेरा ने अपने इतिहास और दर्शन के तथाकथित तादत्म नाम के लेख में लिखा है, दर्शन का संबंध केवल चित्त के उन रूपों अथवा अवधारणाओं के स्पष्ट विवेक से है जिनके द्वारा इतिहासकार उस सब का स्वरूप समझ सकता है जिसकी अनुभूति चित्त को होती है। किंतु जैसा कि कोलोगेरो ने स्वयं गौर किया है, क्रोचे दर्शन शब्द का दो अर्थों में प्रयोग करते हैं। एक और जैसा कि सुविदित है, दर्शन इन चार रूपों में से एक है, कला दर्शन आर्थिक या विनैतिक कार्य एवं नैतिक कार्य। किंतु दूसरी ओर चूंकि दर्शन चित्त की समस्त व्यवस्था का सर्वेक्षण करता है, वह स्वयं उसकी कोई विषय क्रिया नहीं बन सकता, बल्कि सब में व्याप्त चेतना ही हो सकता है। इसीलिए दर्शन या तो चेतना की इतिहास रूपी क्रिया की एक अवस्था है, अथवा एक इतिहास अतीत अनुचिंतन है जिसका विषय चित्त के तात्विक रूप और उनके परस्पर संबंध हैं। दूसरे अर्थ में भी यद्यपि प्रत्येक किसी विचारक के मन में उत्पन्न होता है, उसकी प्रामाणिकता उस ऐतिहासिक युग या समाज तक सीमित नहीं होती जिसमें कि दार्शनिक विचार करता है। जिन पूर्वाभ्युपगमों की वह उपलब्धि करता है, यह किसी विशेष समाज या ऐतिहासिक युग के न होकर चित्त की क्रियात्मक क्रिया मात्र के होते हैं। इसी कारण से दार्शनिक की प्रामाणिकता का दावा कालातीत होता है, न कि ऐतिहासिक, क्योंकि चित्त के स्वरूपगत तत्व किसी विशेष युग के नहीं होते। इस अर्थ में क्रोचे ने स्वयं दर्शन को शुद्ध संप्रत्यय का विज्ञान परिभाषित किया है। उनका कहना है, यदि दर्शन एक विशुद्ध संप्रत्यय है तो वह विशुद्ध संप्रत्यय के विभाग भी है। वह सारे शुद्ध संप्रत्यय भी है जो विशिष्ट निर्णयों के विधेय का कार्य करते हैं और इस तरह से पदार्थ प्रकार बनते हैं। परंतु दर्शन विशुद्ध संप्रत्यय की सजीवी अभिव्यक्ति के रूप में कभी भी संभव नहीं हो सकता यदि वह इतिहास के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित हो, क्योंकि इतिहास निरंतर बदलता है और इसीलिए दर्शन को भी निरंतर नवीन होना हो पड़ेगा। क्रोचे ने अवश्य इस वाक्य को नवीन है इन शब्दों से पूरा किया है, न कि जैसा हमने नवीन होना पड़ेगा इन शब्दों से। किंतु प्रश्न यह है कि यदि शुद्ध संप्रत्यय बदल सकते हैं तो वे शुद्ध ही न होंगे। शुद्ध संप्रत्यय का तत्व उसके अस्तित्व का आक्षेप करता है। इस वाक्य का ठीक अर्थ तभी गुना जा सकता है जब हम दर्शन के विषयभूत शुद्ध संप्रत्यय का प्राकृतिक विज्ञान और गणित विद्या के विषयभूत प्रत्याभ्यासों से व्यतिरेक करते हैं। शुद्ध संप्रत्यय अतिक्रांत भी है और व्याप्त भी, अर्थात सामान्य भी हैं और विशेष भी, जबकि प्रत्याभास कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते और कभी तो दोनों ही नहीं होते। जैसा बिल्डनकार ने लिखा है, प्रत्याभास या तो अतिक्रांत नहीं है और या व्याप्त नहीं है। हमने यह संभावना सुझाई है कि वे दोनों ही न हों, क्योंकि क्रोचे और कार ने जिस तरह गणित सिद्ध संप्रत्ययों को समझा है, वे समान प्रत्यय भी नहीं है। एक त्रिकोण एक बिल्ली से किस तरह भी अधिक समान नहीं है। प्रत्ययों में सिर्फ एक साधारणात्मकता होती है। इन उनके बीच का भेद सिर्फ उनके अपेक्षिक मूर्तता का भेद है, इसीलिए यह कहना गलत होगा कम से कम उस अर्थ में जिसमें कि क्रोचे उन्हें समझते हैं कि गणित सिद्ध पदार्थ सामान्य पदार्थ हैं। साथ ही अवश्य ही एक दूसरे में उन्हें निरी साधारणता के ऊपर सच्चा सामान्य माना जा सकता है, वह इस अर्थ में कि वे संबंध के प्रत्यय में अंतर्भूत अमूर्त और साधारण धर्मों से युक्त लक्षणभूत संबंधों की व्यवस्था हो और इस अर्थ में शुद्ध गणित शुद्ध तर्क से अभिन्न होगा। किंतु इस अर्थ में क्या अमूर्त संबंधात्मक धर्म भी अंतर्व्याप्त और अतएव मूर्त नहीं होंगे, क्योंकि वे किसी भी सत्ता मात्र में व्यक्त होंगे? ऐसा लगता है कि सचमुच में सामान्य होना समस्त विशेषों में व्याप्त या व्यक्त होने से विच्छिन्न नहीं किया जा सकता। जैसा भी हो, हम जिस पर जोर डालना चाहते हैं वह यह बात है कि क्रोचे ने शुद्ध प्रत्यय के जितने लक्षण बताए हैं, यदि उन्हें यथावत लिया जाए तो प्रत्यय के लिए परिवर्तन असंभव हो जाएगा। प्रत्यय अभिभाजक समान और अकल्पित होता है। ये तीनों लक्षण प्रत्यय को शुद्ध प्रत्यय बना देते हैं, अन्यथा या तो वह प्रत्यय ही नहीं होता या सिर्फ प्रत्ययाभास होता है। जो समान विशेष में आवश्यक रूप से व्याप्त है और उसी रूप में व्यक्त है, वही शुद्ध प्रत्यय है। सामान्य विशेष में संपूर्णतया व्याप्त होता है और इसीलिए व्यक्ति अपनी ऐतिहासिकता में उसका और अधिक दृष्टांत नहीं बन सकता। व्यवहारिक प्रत्ययाभास आदर्श आकार को न्यूनाधिक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किंतु मूर्त या द्रव्य सत्य समान इस न्यूनाधिक रूप में निर्देशित नहीं हो सकता। प्लेटो और अरस्तु ने जिस ढंग से सामान्यों का चिंतन किया था, उससे कांट के अवधारण प्रकारों तक कुछ इसी तरह का दिशा परिवर्तन मिलता है। व्यवहारिक प्रत्ययाभास भी न्यूनाधिक रूप में व्याप्त होते नहीं लगते हैं। एक बिल्ली न्यूनाधिक रूप से बिल्ली नहीं होती और न मकान न्यूनाधिक रूप से मकान, बल्कि एक शुद्ध प्रत्यय बिल्ली एक शुद्ध प्रत्यय नहीं है, किंतु इसीलिए नहीं कि वह पूरी तरह से व्यक्त नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह सच्ची तौर से सामान्य नहीं है। सामान्यों में कभी भी ऐतिहासिकता नहीं रही है, किंतु जहां इंद्रिय प्रत्ययाभासों के लिए यह कहा जा सकता है कि वे बदलते हैं क्योंकि वे कभी सामान्य लक्षण नहीं थे, शुद्ध प्रत्ययों के लिए यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि वे सामान्य लक्षण होते हैं। क्रोचे और कार ने जैसा गणित सिद्ध प्रत्ययाभासों को समझा है, वे भी कभी नहीं बदलते क्योंकि सब विशेष न होते हुए भी वे सामान्य होते हैं, और यह कहना कि वस्तुतः सामान्य प्रत्यय में ऐतिहासिकता है एक बद तो व्याघ्यात होगा। तथापि क्रोचे के लिए प्रत्यय की सामान्यता अप्रोच अनुभव की व्यक्तिगत सत्ता को अंतर्भूत और अभ्युपगमित गतिम करती है, और इस प्रकार से ऐतिहासिकता का तत्व प्रत्यय की सामान्यता में नहीं बल्कि अप्रोच अनुभव की विशेषता में होता है। अप्रोच अनुभव और प्रत्यय प्रतिभास और विकल्प एक ही प्रक्रिया के दो भाग हैं। जैसा कार ने लिखा है, सोचने का अर्थ है प्रत्यक्ष में प्रदत्त विशेष को समान रूप देना, प्रत्यक्षगत विशेष का सामान्यीकरण चिंतन में होता है। सौंदर्य बोध की क्रिया में प्रत्यक्ष बिना किसी प्रकार के सामान्य के विशेष की अभिव्यक्ति होता है, किंतु इस पर गौर करना चाहिए कि चिंतन की क्रिया में जो सामान्य विकल्प अंतर्भूत होता है वह मनमाना नहीं होता। जैसा कि विल्डन कार ने स्वयं लिखा है, विशेष प्रत्यय की सामान्य प्रत्यय से एकता अनुभव की प्रवृत्ति नहीं है किंतु मौलिक है, वह वास्तव में अनुभव की एक शर्त है। यह अधिक अच्छा होता यदि कार ने अनुभव शब्द को विमर्श शब्द से विशेषित किया होता, क्योंकि क्रोचे सौंदर्य प्रत्यक्ष के इस वर्णन से एकमत नहीं होंगे। किसी भी तत्व चिंतन में विशेष प्रत्यक्ष और समान विकल्प को जोड़ने की आवश्यकता क्रोचे के मत में इतिहास और दर्शन की अभिन्नता का आधार बन जाती है। क्रोचे का कहना है, विशिष्ट सत्ताओं के विषय में निर्णय होने के कारण इतिहास उद्देश्य और विधेय प्रतिभास और प्रत्यय का समन्वय होता है, किंतु यही वर्णन दर्शन पर भी लागू होगा, क्योंकि यदि इतिहास तार्किक अर्थात दार्शनिक तत्व के बिना संभव नहीं है तो दर्शन भी प्रत्यक्ष अथवा ऐतिहासिक तत्व के बिना संभव नहीं है। किंतु इन दोनों को एक दूसरे से भिन्न नहीं मानना चाहिए, न एक दूसरे पर आश्रित, क्योंकि वे दो रूप नहीं हैं बल्कि एक ही रूप हैं, परस्पर आश्रित नहीं बल्कि परस्पर अभिन्न हैं। जो पूर्व सिद्धि समन्वय विशेष निर्णय और लक्षण यथार्थ हैं, वही दर्शन और इतिहास का यथार्थ है। यह सिर्फ केंद्र और प्राधान्य का भेद है जो हमें दो विभिन्न शब्दों इतिहास और दर्शन का प्रयोग करने की ओर ले जाता है। जब हम किसी निर्णय के विशेष रूप या उद्देश्य पर जोर देते हैं तो उसे ऐतिहासिक कहते हैं, जब हम उसके समान रूप अथवा विधेय पर जोर देते हैं तो उसे दर्शन कहते हैं। यद्यपि इतिहास अन्य ज्ञान के समान एक विशेष निर्णय है, प्रतिभास और विकल्प का अभेद है, तथापि यह आवश्यक नहीं है कि विकल्प शुद्ध विकल्प हो। उद्देश्य प्रतिभास न होकर प्रत्ययभास हो सकता है और निर्णय उद्देश्य विधेय के संबंध के रूप में ही न हो, यह भी संभव है। यह सभी स्वीकार करेंगे कि ब्रूटस ने सीजर को मारा, यह एक ऐतिहासिक ज्ञान वाक्य है, तथापि न ब्रूटस ने मारा शुद्ध प्रत्यय है और सारा वाक्य भी उद्देश्य विधेय के रूप में नहीं है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, यह भी ऐतिहासिक निर्णय का दृष्टांत है, कम से कम उस अर्थ में जिसमें क्रोचे शुद्ध प्रत्यय के लिए समान विकल्प का प्रयोग करता है। क्रोचे ने स्वयं इस स्थान पर अपने विचार को शुद्ध प्रत्यय और प्रत्याभास में भेद न कर गड़बड़ा दिया है। उन सेनाध्यक्षों का उल्लेख करते हुए जिन्होंने मार्गों को खोजकर कार्थेज वासियों का अनुसरण किया, कनाई में प्रवेश किया और अपने आप को हेनीबाल की सेना के सम्मुख देखकर शिविर बनाया और उसकी किलेबंदी की, वह लिखता है, जो व्यक्ति मनुष्य युद्ध सेना पीछा मार्ग शिविर किलेबंदी स्वप्न यथार्थ प्रेम घृणा मातृभूमि इत्यादि से अनभिज्ञ है, वह इस तरह के वाक्य को समझ नहीं सकता। किंतु हमें यह समझ में नहीं आता कि इन सब में सच्चे प्रत्यय के स्वरूप से संबंध बात क्या है। इन सब के सोचने की आवश्यकता इस तरह के वाक्य को कैसे इतिहास या दर्शन बना सकती है, जबकि हमें यह स्पष्ट रूप से पहले ही बता दिया गया है कि प्रत्ययाभास ज्ञान के रूप ही नहीं है। शुद्ध प्रत्यय और प्रत्ययाभास में यह भेद नहीं है कि वह एक नहीं है कि एक सच्चा है दूसरा झूठा, एक उपयोगी है एक उपयोगी और अच्छा है दूसरा भ्रामक और खराब, बल्कि यह कि उनमें एक ज्ञान का रूप है दूसरा नहीं। क्रोचे की सूची में शुद्ध प्रत्यय के निकटतम जो यथार्थ का प्रत्यय है वह भी शुद्ध नहीं रह जाता यदि उसका स्वप्न और भ्रम से भेद किया जाए, क्योंकि इस व्यतिरेक के करते ही वह वस्तुतः सामान्य नहीं रहता। सही यह दिखलाया जा सकता है कि इन सब वाक्यों में शुद्ध प्रत्यय अंतर्भूत हैं, किंतु उससे निर्णय किसी भी अर्थ में ऐतिहासिक नहीं बन जाता। शुद्ध प्रत्यय इसीलिए अंतर्भूत होंगे क्योंकि वे शुद्ध हैं, अर्थात वे सचमुच सामान्य और सत्तात्मक हैं। वे न तो सत्य और मिथ्या निर्णयों के विवेक का, जहाँ तक शुद्ध प्रत्यय के ऐतिहासिक और अनैतिहासिक निर्णयों के विवेक का, जहाँ तक शुद्ध प्रत्यय के अंतर्भाव अथवा निदर्शन का प्रश्न है, सीजर ने ब्रूटस को मारा और ब्रूटस ने सीजर को मारा, या यह कौवा है और तुम बेवकूफ हो, इन वाक्यों के बीच में कुछ भी भेद नहीं है। प्रत्यय के विशेष के बिना शुद्ध प्रत्यय अवश्य ही रिक्त रहता है, किंतु सत्ता में अभिव्यक्त होने के लिए वह इस व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच में भेद नहीं करता, और इसीलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व की ओर से सर्वथा उदासीन रहता है। वह सामान्य है इसीलिए नहीं कि वह सत्तात्मक है, क्योंकि वह सत्तात्मक है क्योंकि वह सामान्य है। वस्तुतः प्रत्यय शुद्ध होने के कारण अर्थात आकार स्वरूप होने के कारण रिक्त है और सचमुच में सामान्य है। क्रोचे का मूलभूत भेद प्रत्यक्ष और अवधारणा के बीच में है। अवधारणा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, वह प्रत्यक्ष का ही अभिव्यंजन है। समस्त ज्ञान इसीलिए दो पदों पर आधारित होगा, प्रत्यक्ष और अवधारणा, जहाँ दोनों एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए होंगे। परंतु क्रोचे दर्शन का लक्षण बताने में एक और आवश्यक भेद प्रस्तुत करता है, और वह है शुद्ध प्रत्यय और प्रत्ययाभास में। और प्रत्ययाभास में प्राकृतिक विज्ञान और गणित प्रत्ययाभासों से संबंधित है और इस प्रकार दर्शन से सर्वथा भिन्न है। अवश्य ही शुद्ध प्रत्यय के बिना उनकी सत्ता नहीं हो सकती, किंतु उनका विशिष्ट सत्य और क्षेत्र प्रत्ययाभासों का ही क्षेत्र है। क्या इतिहास में भी प्रत्ययाभास अंतर्भूत हैं? इस प्रश्न का उत्तर देना इतिहास और दर्शन के तादात्म्य के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि यदि इतिहास प्रत्ययाभासों का उपयोग करता है तो वह दर्शन से अभिन्न नहीं हो सकता। इसके लिए शायद बहुत तर्क देने की आवश्यकता नहीं है कि क्रोचे ने जितने प्रत्ययों की हेनीवाल की सेना के शिविर के संबंध में सूची दी है वे सभी प्रत्ययाभास हैं। इसीलिए स्पष्ट होना चाहिए कि यदि इन प्रत्ययों का उपयोग करने वाली अन्य विद्याएं दर्शन नहीं हैं तो इतिहास भी दर्शन नहीं हो सकता। वस्तुतः क्रोचे ने उन दो चिंतन की दिशाओं में भेद नहीं किया है जो उसे इतिहास और दर्शन के तादात्म्य के प्रतिपादन की ओर ले जाती है। ऊपर निर्दिष्ट प्रत्यक्ष और विकल्प की एकता का तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ सब ज्ञान को ज्ञान बताता है, न कि उसे इतिहास, दर्शन, विज्ञान या गणित। वह वास्तव में सैद्धांतिक ज्ञान के प्रत्यय में अनिवार्यता और अंतर्भूत अभ्युपगमों का विश्लेषण है, और इसीलिए वह दर्शन का ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा से अभेद बतलाने के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं करता। यदि दर्शन को पूर्व सिद्ध अध्यवसाय प्रागनुभविक प्रत्यय संयोजन या विकल्पना के साथ अभिन्न माना जाए तो सभी ज्ञान दर्शन पूर्वक बन जाते हैं, और दर्शन या तो उन सबसे अभिन्न या किसी से भी अभिन्न नहीं होता। यदि एक ओर गणित और प्राकृतिक विज्ञान और दूसरी ओर दर्शन में इस आधार पर भेद किया जाए कि दर्शन शुद्ध प्रत्यय विषयक होता है और विज्ञान प्रत्ययाभास विषयक ही, तो यह भेद दर्शन और इतिहास के बीच में भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास भी प्रत्ययाभास विषयक होता है। जिस अर्थ में इतिहास के प्रत्ययाभास शुद्ध प्रत्ययों को अंतर्भूत करते हैं, उसी ढंग से गणित और प्राकृतिक विज्ञान के प्रत्ययाभास भी करते हैं। क्रोचे के विचार की दूसरी दिशा इस प्रश्न को लेकर चलती है कि सभी पदार्थों का इतिहास होता है, इसीलिए दर्शन का भी। इतिहास और दर्शन के इस तादात्म्य के प्रतिपादन का कारण देते हुए क्रोचे का कहना है, दार्शनिक प्रकथन लक्षण या संस्थान का आविर्भाव एक निश्चित व्यक्ति के मन में देश काल के एक निश्चित बिंदु पर और निश्चित परिस्थितियों में होता है, इसीलिए वे ऐतिहासिक परिस्थितियों के अधीन हैं। ऐतिहासिक हेतु प्रत्ययों के बिना दार्शनिक संरचना वह नहीं होगी जो कि वह है। ये वाक्य दर्शन को एक कालिक घटना के रूप में लेते हैं, उसमें कुछ पूर्व हैं और कुछ पाश्चात, और दोनों के बीच में हेतु प्रत्यय संबंध है। अपने संदर्भ और निवेश में ये वाक्य विस्मयकारी रूप से प्राकृतिकवादी हैं। उनमें व्यक्ति निश्चित रूप से प्राकृतिक है और अपने कालिक पूर्ववर्ती से प्रतीत्य समुत्पन्न है। यह सारी दृष्टि हेतुपरक अनुभवपरक है, क्योंकि इसमें अतीत और वर्तमान का भेद और वर्तमान के अतीत पर निर्भरता स्वीकृत की गई है। यह कोई अलग अलग वाक्य नहीं है, किंतु एक अभिच्छिन्न युक्त ही है। प्रकृति की अनैतिहासिकता का निषेध करते हुए क्रूचे लिखता है, यह विचित्रतम प्रतिपादन का कोई इतिहास नहीं होता। इस विस्मृति से उत्पन्न होता है कि प्राकृतिक विज्ञानों का ऐतिहासिक आधार होता है, इस अज्ञान से कि वह ऐतिहासिक आधार ही उनका एकमात्र सत्य है, और उस भ्रांति से जो कि सिर्फ व्यवहारिक महत्व के वर्गीकरणों को सैद्धांतिक महत्व देती है। प्रकृति ऐतिहासिक है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान ऐतिहासिक परिस्थिति के अधीन है। दर्शन ऐतिहासिक है, क्योंकि दार्शनिक चिंतन ऐतिहासिक परिस्थिति के अधीन है। क्रोचे प्रकृति और प्रकृति के प्रत्यय में भेद नहीं करते, और इसीलिए उनके लिए प्रकृति निरंतर बदलती रहती है, क्योंकि वह निश्चित देश काल की निश्चित परिस्थितियों में एक निश्चित व्यक्ति के मन पर आधारित होती है। यह पूछना एक मजाक सा लगेगा कि क्या प्रकृति आदिम बर्बर मनुष्य से लेकर आइंस्टीन तक के अपने विषय के विचारों के अनुसार अपने आप को बदलती रही है, और क्या चूंकि आइंस्टीन के साथ ही असभ्य मनुष्य भी अभी तक विद्यमान हैं। प्रकृति एक साथ ही दोनों के अनुरूप है। जो कुछ भी हो, ऐतिहासिक हेतु प्रत्यय किस बात को निर्धारित करते हैं? अतीत के रूप में विदित अतीत को या कि अविदित अतीत को भी? अर्थात ऐतिहासिक प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है? समुत्पादन क्या है? न तो प्रकृति न दर्शन, क्योंकि वे दोनों ही समुत्पन्न हैं, न कि समुत्पादक प्रत्यय। चित्त का अतीत, किंतु चित्त का अतीत कैसे हो सकता है जबकि वह सदा वर्तमान है? क्या वह क्रोचे या हेगेल या कालिंगवुड की आत्मा है? क्योंकि वे इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि और आत्माएं भी है, या वह लोकातीत चित्त है। यदि ऐसा है तो वह इतिहासाधीन कैसे होगी? हम इतिहासाधीनता को निरर्थक नहीं कह रहे, हम यही सुझाना चाहते हैं कि उसका सिर्फ एक कारणिक अनुभविक अर्थ होता है, जो कि क्रोचे के इतिहास और दर्शन के समूचे सिद्धांत से असंगत है। वह कहेगा कि हम उसके मत को बिल्कुल नहीं समझे हैं। अपने लॉजिक के 319वें पृष्ठ पर उसने कहा है, यद्यपि दार्शनिक प्रकथन इतिहास पर आश्रित होता है, वे उसके द्वारा उत्पादित कार्य के रूप में नहीं होते। वे विचार की स्वतंत्र सृष्टियाँ होती हैं, जो कि उनमें और उनके द्वारा आगे बढ़ती रहती है। वे आगे हमें चेतावनी भी देते हैं कि अगर उन्हें एक निश्चित रूप में उत्पादित देखा जाए तो उन्हें दर्शन नहीं मानना चाहिए, बल्कि केवल दर्शनाभास, जो विचारों के रूप में प्रछन्न जैविक स्वार्थ से अधिक कुछ नहीं है। इन वाक्यों का अवश्य ही अर्थ है, किंतु केवल जब तब उन्हें क्रोचे से अभिन्न ढंग से समझा जाए। शायद इसका अर्थ यह है कि एक सामाजिक परंपरा है जो हमारी विरासत होती है, जिसमें हम पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, जो कि हमारे लिए एक संदर्भ प्रस्तुत करती है, किंतु हमारे न्यूनाधिक रूप से स्वतः स्फूर्त विचारों को पूर्णतया निर्धारित नहीं करती। हमारा यह दावा नहीं है कि इस बात को कहने का यह सबसे अच्छा ढंग है, किंतु बात कुछ इसी प्रकार की है। जिसका निषेध किया जा रहा है वह कट्टर नियतिवाद है। जो सुझाया जा रहा है वह वही है जिसे कभी कभी प्रभाव कहा जाता है, किंतु क्रोचे के लिए इतिहास निर्भरता, जो कि पूरी तरह से प्रतंत्र नहीं करती, सदा वर्तमान में रहती है। अतीत सदा वर्तमान में, विदित वर्तमान में रहता है, किंतु यह कहना गलत लगता है कि वर्तमान युग में उत्पन्न विचारक कांट से पहले या आगे के समूचे इतिहास दर्शन के विकास को भुला नहीं सकता। वस्तुतः पाश्चात्य परंपरा में जो उत्पन्न नहीं हुआ है और जो पाश्चात्य भाषाओं से अपरिचित हैं, ऐसा विचारक सारे पाश्चात्य दर्शन को ही भुला देगा। यह संभावना दुस्संभाव नहीं है। भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति कभी कभी मिलते हैं जिन्हें संस्कृत के अतिरिक्त और अपने क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त कोई भाषा नहीं आती और जिनकी विचार विधा और विचार सरणी विचार भारतीय परंपरा से इतनी गूथी है कि यदि हम केवल पाश्चात्य विचारक को ही चित्त का वास्तविक प्रतिनिधि न माने तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो अतीत वर्तमान में सदा विद्यमान रहता है वह अतीत का खंड मात्र है, न कि संपूर्ण अतीत। लोक समान बुद्धि के द्वारा की हुई व्याख्या व्यक्ति चेतना की तुलना में प्रकृति और समाज दोनों की ही पूर्व स्थिति मानता है। क्रोचे इसको अस्वीकार करते हैं। उनके लिए प्रकृति और समाज चित्त के यथार्थ जीवन से उद्गृहित अयथार्थ प्रज्ञप्तियां हैं। पर इस कारण तो उनके लिए ऐतिहासिक परतंत्रतावाद चित्त के स्वतंत्रतावाद के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता, किंतु उनका अपना तर्क यह नहीं है। दूसरी युक्ति की प्रामाणिकता इस बात से थी कि वह अनुभविक प्राकृतिक स्तर के विषय में थी। देश काल के निश्चित बिंदु पर निश्चित परिस्थिति में निश्चित व्यक्ति एक प्राकृतिक अनुभविक व्यक्ति है, जो कि देश काल और परिस्थिति के प्राकृतिक अनुभविक प्रत्यय अभ्युपगम मित्र करता है। उसके बिना इस वाक्य खंड का कोई अर्थ नहीं है, अन्यथा अन्य व्यक्तियों से भिन्न कोई एक निश्चित व्यक्ति नहीं होता, न कोई अलग देश काल या परिस्थितियां जिन्हें कि लोकातीत चित्त के जीवंत प्राण से पृथक किया जा सके। यदि यह दूसरी तर्क विधा ठीक है तो क्रोचे के सिद्धांत को गड़बड़ा देगी। वह इतिहास और दर्शन के भेद को भी सिद्ध नहीं करेगी, क्योंकि ठीक होने के लिए उसे यह मानना पड़ेगा कि समाज इतिहास का पूर्ववर्ती है और प्रकृति समाज की। प्रत्यक्ष और अभिव्यक्ति का भेद प्रमाणिक हो सकता है, जैसा कि क्रोचे ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सौंदर्य शास्त्र संबंधी पुस्तक में किया है, किंतु चिंतन और चिंतन के विषय का नहीं। तथापि एक समस्या समाहित रहती है और वह इन दोनों बातों से प्रस्तुत होती है, एक कि इतिहास का प्रत्यय और स्वयं इतिहास भी दार्शनिक चिंतन का विषय होता है, दूसरे यह स्वयं घटनाओं की श्रृंखलाओं के अंदर एक ऐतिहासिक घटना मात्र है। इनमें पहली वाली बात एक अनैतिहासिक दृष्टिकोण है जिसे अतिक्रमिक अपवर्जन कहा जा सकता है। दूसरा मामूली आदमी का प्राकृतिक अनुभविक दृष्टिकोण है। हुसरल के लिए दर्शन तभी प्राप्त होता है जबकि प्राकृतिक अनुभविक दृष्टिकोण छोड़ दिया जाता है। क्रोचे के लिए यह समस्या कोई समस्या नहीं है, क्योंकि विशुद्ध संप्रत्यय में अप्रोच अनुभव का विशेष क्षण सदा ही अंतर्भूत रहता है। किंतु यह समाधान नहीं है, पलायन है, क्योंकि अप्रोच ज्ञान की विशेषता और शुद्ध प्रत्यय के समान रूप तत्वतः पृथक रहते हैं। विशेष प्रत्यक्ष प्रत्यय की आवश्यकता नहीं रखता, इस बात को स्वयं क्रोचे स्वीकार करते हैं। ऐसे ही शुद्ध संप्रत्यय के तात्विक रूप भी प्रत्यक्ष की विशेषता अपने नहीं रखते। यह सच है कि किसी भी ज्ञान में दोनों का होना आवश्यक है। प्रागनुभविक संयोजन ज्ञान का पूर्वाभ्युपगम है। यदि हम यह नहीं जानते कि इसी ज्ञान में संयोजन का क्या अंश है, ऐसा होने पर भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञान ज्ञान है, न कि वह दर्शन है या इतिहास, विज्ञान है या गणित। यह ठीक है कि दर्शन या इतिहास को परिभाषित करने की हमें स्वच्छंदता है, किंतु यदि ऐसा है तो यह सब एक शब्दों का झगड़ा हो जाएगा। वह इतिहास वह दर्शन के भेद के बारे में कुछ न कहेगा, और फिर यदि इतिहास का अर्थ ही अनुभव निरपेक्ष विकल्पना है तो सभी ज्ञान इतिहास हो जाएगा और यह वाक एक आवश्यक पुनरुक्ति मात्र बनकर रह जाएगा। ये दो बुनियादी दृष्टिकोण एक दूसरे से विरोधी नहीं हैं, इनमें वास्तव में एक दूसरे का स्थान ग्रहण करता है। प्राकृतिक अनुभविक ऐतिहासिक दृष्टिकोण तब पैदा होता है जब हम विषय को विषय मानकर चलते हैं, किंतु जैसे ही हम आत्मा की आधारभूत केंद्रीयता को समझते हैं दूसरा दृष्टिकोण उत्पन्न हो जाता है। कालिक और अकालिक का संबंध इस समस्या का सार है। इसे एक मिथ्या प्रज्ञप्ति कहकर छोड़ा जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि कोई समस्या नहीं है, किंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी समस्याएं विकल्प मूलक होती हैं। वस्तुतः स्वयं कोई समस्याएं नहीं होती, वह सिर्फ स्वचेतन मानस के लिए होती है जो कि दो असंगत प्रतिज्ञाओं को तुल्य बल प्रतीत होते देखता है। दार्शनिक सामान्यतः आत्मा की अकालिक आधारभूत केंद्रीयता को विनिग महत्व देते हैं, जबकि वैज्ञानिक व इतिहासज्ञ जो कि विशिष्ट विषयों में दार्शनिक से अधिक रुचि रखते हैं इस बात का अनुभव करते हैं कि दार्शनिक की तथाकथित अकालिक चेतना बिल्कुल ही महत्वहीन है, क्योंकि वह एक श्रृंखला की कड़ी है जिसमें पहले और पीछे अनविचारक होते हैं। महत्व के प्रत्यय का विशदीकरण कठिन है। जो स्पष्ट देखा जा सकता है वह यह कि दोनों प्रकार के महत्व स्वीकार किए गए हैं। ये परस्पर विरोधी लगते हैं और यद्यपि उनमें से किसी को भी अस्वीकार किया जा सकता है, वह एक आग्रह की बात होगी, न कि पर्याप्त तार्किक आधार की। जो कुछ भी हो, इतिहास और दर्शन का भेद इतिहास के प्रत्यय की ऐसी पुनर्व्याख्या अवश्य करता है जिससे कि सबका सब निश्चित अर्थ खो जाता है। यहाँ पर भी दर्शन अपना स्पष्ट अर्थ बनाए रखता है, क्योंकि विशुद्ध प्रत्ययों के रूप में कुछ भी कालिकता नहीं है। कांट के विकल्प, हेगल का द्वंद्वात्मक नए, क्रोचे के रूप में सब स्वरूपतः अनैतिहासिक है, इसीलिए दर्शन को इतिहास से अभिन्न बताना गलत है। यद्यपि अन्य विद्याओं के समान इतिहास भी दर्शन के लिए समस्याएं प्रस्तुत कर सकता है, दर्शन समाज विज्ञान, इतिहास, मनोविज्ञान, शायद शरीर विज्ञान तक का एक अध्याय माना जा सकता है, किंतु तब वह दर्शन नहीं होगा बल्कि मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, इतिहास या शरीर विज्ञान होगा। इन संकीर्ण प्रत्ययों में किसी की रुचि हो सकती है और वह इन्हें महत्वपूर्ण भी समझ सकता है, किंतु इसके लिए कोई औचित्य नहीं है कि सब अध्ययन को उसी एक में लीन कर लिया जाए जिसे कोई महत्वपूर्ण समझता है। किसी के द्वारा प्रतिपादित निर्णय की ऐतिहासिकता यथार्थ से उस निर्णय की प्रामाणिकता का प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। यद्यपि प्रमाण के प्रश्न के उठाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में वह क्या है। किसी ने, मान लीजिए अरस्तु ने, किसी ढंग से सोचा, इससे उसके विचार की प्रामाणिकता या यथार्थता का कोई आधार नहीं पता चलता, वरना सभी बातें बराबर की प्रमाणिक या अप्रमाणिक हो जाएंगी और यह निर्णय विचार के आधार को ही नष्ट कर देगा। इसीलिए दर्शन न तो अपने इतिहास के साथ अभिन्न है, न इतिहास मात्र के साथ। दूसरे शब्दों में ब्रूटस ने सीजर की हत्या की इस बात से उठाई हुई दार्शनिक समस्याएं उसके द्वारा उठाई गई ऐतिहासिक समस्याओं से बिल्कुल भिन्न हैं। दार्शनिक के लिए कोई भी दूसरा वाक, जैसे हेमलेट ने पोलोनियस की हत्या की, पर्याप्त होगा, किंतु इतिहासकार के लिए ऐसा नहीं हो सकता। दार्शनिक के प्रयोजन के लिए प्रतिज्ञा वाक को सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक साक्ष्य बिल्कुल अप्रासंगिक है। वस्तुतः दार्शनिक या विमर्श किसी विशेष व्यक्ति ही के उल्लेख की आवश्यकता नहीं रखता। वह इस प्रकार के वाक्य से भी संतुष्ट हो जाएगा कि क ने ख की हत्या की और क और ख के स्थान पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। दार्शनिक की रुचि हत्या के संबंध में भी न होकर सिर्फ उसके अतीतवाचक प्रत्यय में ही हो सकती है। क्रोचे की पुस्तक में सीजर और अलेक्जेंडर के नाम आते हैं, किंतु वे वैसे नहीं आते जैसे एक इतिहास की पुस्तक में, अर्थात अपरिवर्तनीय रूप में। और यह हो भी नहीं सकता, क्योंकि क्रोचे अलेक्जेंडर नाम के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति में रुचि नहीं रखते, बल्कि उसे केवल दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अन्य विद्याओं के समान इतिहास भी शुद्ध संप्रत्ययों का प्रयोग करता है, क्योंकि उनके बिना वह ज्ञान नहीं बन सकता। किंतु विज्ञान और दर्शन इन दोनों से भिन्न इतिहास का संबंध विशिष्ट विशेष से होता है, ऐसे विशेष से जो कभी दोहराया नहीं जाता। कला जो कि अप्रोच ज्ञान की स्वरूपता स्वरूपगत विशेषता से संबंध होती है, कल्पना के न्याय के अतिरिक्त और किसी बात से नियंत्रित नहीं होती। किंतु इतिहास का एक बाह्य नियामक होता है, यद्यपि वह विज्ञान से अधिक प्रतनु होता है। पुनश्च बौद्धिक ज्ञान होने के कारण इतिहास प्रत्यय का प्रयोग करता है, शुद्ध प्रत्यय का भी तथा और प्रत्ययाभास का भी, क्योंकि एक के बिना वह ज्ञान नहीं होगा और दूसरे के बिना इतिहास न होकर दर्शन हो जाएगा। इस तरह इतिहास एक ओर कला की प्रांत भूमि पर स्थिर रहता है और दूसरी ओर विज्ञान और दर्शन की। उसका विषय विशेष स्वभाव होता है, किंतु वह अपनी अपरोक्षता में नहीं बल्कि अपनी कालिकता में। उसका विषय विज्ञान, कला अथवा दर्शन हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति मानस के विचार होने के कारण उनमें भी एक विशेषता और कालिकता होता है जब वह एक व्यक्ति तक सीमित होता है तब उसे जीवनी कहते हैं। जब सभी समुदाय अथवा समाजों को उनकी कालिक विशेषता में वह अपना विषय बनाता है तो इतिहास कहलाता है। इसीलिए दर्शन को इतिहास समझना गलत है, क्योंकि यद्यपि दर्शन का इतिहास रहा है, वह इतिहास दर्शन का इतिहास है, न कि भौतिक जैविक अथवा रोमन साम्राज्य का। इसीलिए दर्शन की अपनी कोई विशिष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए, अन्यथा अन्य विषयों के विषय से पृथक उसका अपना कोई इतिहास नहीं हो सकता। समाप्त।